राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ॐ नमः ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपलवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मीति ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः आदगुरये नमः जुगादगुरये नमः सतगुरये नमः श्रीगुरुदेवये नमः ॐ शान्तिः 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 बोलो सच्चिदानन्द भगवान् की जय श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय सतगुरुदेव महाराज की जय श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय कण कण में व्याप्त सर्वंत्र जामी प्रभु पिता परमात्मा के चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए सर्वकाल वंदे अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन वेदांत केसरी श्री स्वामी निर्मल जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए परम श्रद्धेय स्वामी निर्मल चेतन जी महाराज तथा संत वृंद समूह श्रोता रूप में उपस्थित निज आत्माओं सबका अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हीं के पावन तपस्थली पर बैठ कर के हम अपने मनुष्य जन्म का जो परम लक्ष्य है जिस लिए हमारे को यह अवसर प्राप्त हुआ है भई प्राप्त मानुक देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया उस लक्ष्य का चिंतन करते हैं ज्ञान चर्चा करते हैं। तो हम विचार कर रहे थे भक्त जी महाराज जी के पावन वचनों से चिंतन कर रहे हैं भक्त कबीर जी महाराज जी के पावन वचन हम चिंतन कर रहे थे। भक्त जी महाराज कहते हैं प्रेमा भक्ति में प्रवृत्त होने का उपदेश देते हैं कि भक्ति के बिना उपासना के बिना ज्ञान के चिंतन के बिना जो संसार के केवल कर्म हैं कर्म मात्र जो हम करते हैं यानी जो पाखंड पूर्वक कर्म करते हैं, जिसमें केवल भक्ति के हीन, उपासना के हीन, जो केवल कर्म में निष्ठा रख के हम कर्म करते हैं, उससे संसार बंधन की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब कर्म के फल की आसक्ति रहती है, कर्म फल की इच्छा करके सकाम कर्म हम करते हैं, तो फिर संसारिक इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। लेकिन जो हमारा परम लक्ष्य है कि दुख की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, यह वाला जो लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति केवल सकाम कर्म से नहीं हो सकती। चित्तस्य शुद्धाय कर्म न तो वस्तु उपलब्धाय, वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कोटि कर्म भी। तो इसलिए कहते हैं कि जो कर्म है वो चित्त की शुद्धि के लिए है। वो भी कौन सा कर्म? निष्काम, वासना से रहित हो करके, फल की आसक्ति को छोड़ करके, यानी त्याग पूर्वक जब कर्म करें, कर्तव्य समझ के कर्म करेंगे तो चित्त की शुद्धि होगी उससे। लेकिन जो वस्तु विचार है, वस्तु यानी वस्तु एक ब्रह्म है, बाकी सब अवस्तु हैं, जो भी दिखाई पड़ती हैं ये सब अवस्तु हैं यानी मिथ्या है। तो उस ब्रह्म की जो प्राप्ति है, उस ब्रह्म की प्राप्ति यानी ब्रह्म में अभेद चिंतन करके उसके साथ समाहित जो होते हैं, उसका हमारे पास उपाय क्या है? विचार। वस्तु सिद्धि तो विचारेण, यह शंकराचार्य महाराज जी का वचन है कि वस्तु की सिद्धि होती है विचार से, ना किंचित कोटि कर्म भी। करोड़ कर्म भले करते रहें, केवल कर्म की बात करते हैं, कर्म का खंडन नहीं करते। जो सकाम कर्म करते हैं, फल की आसक्ति रख के जो कर्म करते हैं, उसका खंडन करते हैं कि उससे भले इस प्रकार आप करोड़ कर्म करते रहो, तब भी वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। तो यानी निष्काम कर्म करने चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। उसी बात को यहाँ कबीर जी महाराज कहते हैं कि कल हमने विचार किया था, वह कहते हैं कि माधव जल की प्यास न जाए, जल में अग्न उठी अधिकाए। ऐसा कहते हैं कि हे माधव, हे ईश्वर, जल की प्यास न जाए। जो आपका भक्ति रूपी जल है, जो नाम रूपी जल है, उसकी प्यास इतनी है, उसकी इतनी उत्कट जिज्ञासा है मेरे अंदर, यानी भक्ति की इतनी जिज्ञासा है कि भक्ति रूपी जल के बिना मैं रह नहीं सकता। माधव जल की प्यास न, यानी जितना मैं आपका नाम उच्चारण करता हूँ, भक्ति करता हूँ, कीर्तन भक्ति में जुड़ता हूँ, मेरी प्यास और बढ़ती जाती है, जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती। यानी बार बार आपकी लीलाओं का, आपके नाम का उच्चारण करने को मन करता है। तो इसलिए कहते हैं कि माधव जल की प्यास न जाए, मेरी जो आपकी भक्ति रूपी जल की प्यास है वह नहीं जाती। जल में अग्न उठी अधिकाए, उस नाम जल को जपने में मेरी अधिक इच्छा बढ़ रही है। बार बार मेरा मन आपका नाम स्मरण भक्ति करने को करता है। अथवा कहते हैं कि जो पदार्थों की प्राप्ति रूपी जल है, उसकी तृष्णा जो मेरी थी अब सब उठी, यानी दूर हो गई, अब नहीं है। आपका नाम रूपी जल मिलने से जो पदार्थों की प्राप्ति रूपी जल की अधिक इच्छा थी, वह उठी यानी खत्म हो गई, अब नहीं है। तो उसके बाद इसमें कह रहे हैं कि तू जल न दहाओ जल का मीन, अपनी जो उत्कट जिज्ञासा है, जो प्यास है, उसका वर्णन करते हैं कि तू जलनद, यानी मैं आपसे बिछुड़ करके नहीं रह सकता। भक्ति की महिमा बतलाते हैं कि जो भक्त होता है वह प्रभु से जब प्रेम करता है तो केवल त्याग रहता है उसके अंदर, प्रभु के दर्शन के बिना उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। तू जल ने दहाओ जल का मीन, आप उस भक्ति रूपी जल के समुद्र हैं। और जैसे मछली रहती है ना जल में, तो जल के बाहर उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो भक्त भी जब भक्ति में लीन होता है तो भक्ति से बाहर उसका जीवन नहीं रहता। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे। इस प्रकार भी एक वचन आता है कि जैसे मछली बिना पानी के जीवन नहीं उसका रहता, जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, बूंद भी होना चातिको क्यों कर तृप्तावे। जो चातिक होता है, जो पपीहा होता है, उसकी इतनी प्यास रहती है उसको किसकी, स्वाति जो बूंद होती है, स्वाति नक्षत्र में जब बूंद गिरती है तो उसके लिए प्रियो प्रियो पियो पियो करता रहता है। बूंद में होना चातिको, जो बूंद है स्वांति बूंद, उसके बिना जो चातिक है, बूंद में होना चातिको क्यों कार्तृपतावे। भले हर रोज वर्षा होती रहे लेकिन उसको वह बूंद चाहिए, उस वर्षा से कहते हैं उसकी तृप्ति नहीं होती। बूंद भी होना चात्रिको क्यों कर तृप्ताव। इसी प्रकार नाद परंके बेध्या सानमुख उठ धावे। जो हिरण है उसको शिकारी जो नाद सुनाता है ना, उसके लिए इतना ज़्यादा उसके अंदर जिज्ञासा है सुनने की कि जब भी वो शिकारी उस शब्द को बजाता है ना तो वो अपने जीवन की बिल्कुल परवाह नहीं करता, सीधा दौड़ करके उसके सामने चला जाता है। उसको फंदक से शिकारी से मतलब नहीं, उस इतना उसको शब्द के साथ प्रेम है कि जब भी वो बजाता है नाद तो सन्मुख उठ धावे, सीधा सामने चला जाता है। उसका जीवन बचता है या नहीं बचता, उसका उस शब्द में ही जीवन है। उसी प्रकार कहते हैं भवर लोभी कुसुम बासका, जो भवर है ना भवरा, वो लोभी है किसका, उस सुगंधी जो आती फूल की उसका, आशिक है वो उसका सुगंधी का। भवर लोभी कुसुम बास का मेला आप बंधा है, बैठ जाता है जब जाकर के कमल पर, तो रात्रि के समय जब सूर्य उदय होते हैं अस्त होते हैं तो कमल जब बंद हो जाता है तो बीज में बंद हो जाता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अघावे। ये सबका दृष्टांत दे करके बताते हैं कि त्यों संत जना हरि प्रीत है। जिस प्रकार ये सब पीछे वालों की प्रीति बतलाई ना, चातक की बूंद के साथ, मछली की पानी के साथ, मृग की उस शब्द के नाद के साथ और भवर की सुगंधी के साथ जैसे प्रीति है, त्यों संत जना हर प्रीत है। जो संत जन हन, जो भक्त हन प्रभु के, उनकी ऐसी प्रीति है प्रभु के साथ, देख दर्श अघावे। वो जब तक उनको दर्शन नहीं होता हरि का तो तृप्ति नहीं होती उनकी। इसी प्रकार जहाँ पर कहते हैं कबीर जी महाराज कि तू जल ने दहाओ जल का मीन, आप उस भक्ति रूपी जल के समुद्र है और मैं उस भक्ति रूपी जल के समुद्र में क्या हूँ, मछली की तरह हूँ। भाव उसके बाहर मैं रह नहीं सकता, जीवन नहीं होता मेरा। जब मैं याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ तभी जीवन होता है। काल भी बताया था हमने कि आखा जीवा विसरह मर जाओ। जब मैं स्मरण करता हूँ, भजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ तभी जीवन है। जब मेरे को विस्मरण हो जाता है तो मानो मृत्यु हो जाती है। एक और वचन कहते हैं गुरुदेव कि जिसकी प्रभु के साथ प्रीति नहीं होती वह मुर्दे के समान होता है, भले वो उसमें कितने भी गुण होते हैं, फिर भी जब प्रीति नहीं है तो क्या होता है कि मुर्दे के समान होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब मेरे को विस्मरण हो जाता है तो मेरी मृत्यु यानी आत्मिक मृत्यु हो जाती है। तू जल निध हम मीन तुम्हारे, आप जल निधि हैं, भक्ति रूपी जल के खजाने हैं, हम आपकी उस भक्ति रूपी जल के समुद्र में मीन हैं। तेरा नाम बूंद हम चात्रिक तिखहारे, आपका नाम भक्ति रूपी जो जल है अथवा आपका जो नाम है ना, वो तो बूंद है, स्वांति बूंद, और भक्त कैसा है, वो चातिक है, पपीहा है। तो इसलिए कहते हैं जैसे मैं कह रहा था कि अति सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, मृतक कही यह नानका जह प्रीत नहीं भगवंत। अति सुंदर, अति सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है किसी को, बहुत सुंदर है, और क्या है, कुलीन अच्छी कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, अति सुंदर कुलीन, फिर चतुर है यानी बहुत सियाना है, समझदार है, बुद्धिमान है, और क्या है, धनवंत। अति सुंदर तो कुलीन है, चतुर है, मुख ज्ञानी, धनवंत, चतुर बहुत है, समझदार है, बुद्धिमान है, मुख ज्ञानी, और हर बात का ज्ञान रखता है, और धनी भी है उसके पास, ये सब कुछ है, फिर भी कहते इतने वैभव उसके पास होते हुए अति सुंदर है, अच्छे घर में जन्म हुआ है, चतुर है, बुद्धिमान है, हर एक बात का ज्ञान रखता है, धन की कमी नहीं है, हर एक संसार की वस्तु उसके पास है, पर यदि प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मृतक कहिए नानका, यानी उसको फिर मुर्दा ही बोला जाएगा। यह प्रीत नहीं भगवंत, जो प्रभु पिता परमात्मा के चरणारविंदों में प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर मुर्दा ही उसको जान लीजिए। इसलिए कहते हैं तू जल ने दहो जल का मीन, आप भक्ति रूपी जल के समुद्र हैं और मैं मछली के समान हूँ, जल में रहो जल है बिन खीन। उस भक्ति रूपी जल में जब तक मैं रहता हूँ यानी भक्ति स्मरण कीर्तन में रहता हूँ तभी तक मेरा जीवन है, जल है बिन खीन। जब जल से बाहर जैसे मछली का जीवन नहीं रहता उसी प्रकार मेरा जीवन नहीं रहता। फिर कहते हैं तू पिंजर हो सुअटा तोर, जाम मंजार कहाँ करे मोर। पहली पंक्ति में कबीर जी महाराज जी ने प्रभु से अपने वियोग का खंडन किया कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, यानी उससे मेरा वियोग कभी नहीं होता। और अब कहते हैं कि जिस प्रकार अब कहते हैं कि जैसे हमने जो तोता होता ना, तोता उसको पिंजरे में डाल के रखते हैं, तो कहते हैं कि हे प्रभु आप कैसे हैं, आप तो मानो पिंजरा है और मैं कौन हूँ, तोता, मैं जो तोता हूँ, तो तोते को किस लिए पिंजरे में डाला जाता है, तोते को जब हम पिंजरे में डाल के रखते हैं तो किस लिए, कि इसको बिल्ला ना खा जाए, कोई जानवर ना खा जाए, इसलिए रखते हैं ना। तो कहते हैं हे प्रभु आप पिंजरा हैं, तो मैं आपके उस पिंजरे में कौन से तोते की तरह हूँ, इसलिए मैं आपके स्वरूप रूपी पिंजरे में रहता हूँ, तो जब मैं आपकी रक्षा के अंदर हूँ, आपके भक्ति रूपी अथवा ज्ञान रूपी पिंजरे में हूँ, तो जाम मंजार कहाँ करे मोर, जो जाम रूपी बिल्ला है वो वो मेरा क्या कर सकता है। तो कहते हैं कि भक्त की रक्षा कहाँ होती है, जब वो ज्ञान रूपी पिंजरे में रहता है, भक्ति रूपी पिंजरे में रहता है, ईश्वर की जो शरणागत रूपी पिंजरा है उसमें रहता है जब तक, तो उसको जाम जो है वो कुछ नहीं कर सकता। संसार की तो बात ही छोड़ो आप, संसार का भय तो छोड़ दीजिए, उसको तो जाम में कहते कुछ नहीं कर सकता। ये कबीर जी महाराज कहते हैं आप एक पिंजरा हैं और मैं तोता हूँ, आपके भक्ति रूपी पिंजरे में जब तक रहता हूँ जाम मंजार कहाँ करें मोर, जो जाम रूपी बिल्ला है वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपका भक्ति रूपी पिंजरा मेरे चारों तरफ है। और तीसरी बात कहते हैं कि तू तरवर हौ पंखी आहे, फिर कहते हैं कि हे महाराज आप तो एक वृक्ष रूप हो, और वृक्ष में कौन रहते हैं, पक्षी रहते हैं, आप वृक्ष की तरह हैं और मैं उस वृक्ष के आश्रित रहने वाला पंछी हूँ। तो जब पक्षी रहता है वृक्ष के ऊपर तो उसको तपश भी नहीं लगती, उसको जो सूर्य की तपश होती है, गर्मी होती है, वो भी नहीं लगती, और क्या होता है उस वृक्ष से उसको जो उसके शरीर की जो खुराक है मिलती है, यानी उसको फल खाने के लिए मिलते हैं, जिस फल की इच्छा करता है उसी वृक्ष पर जा बैठता है, तो उसको वो फल मिल जाता है और छाया मिल जाती है, और छाया और फल का दोनों का भोग करता है पक्षी। तो इसलिए कहते हैं कि आप एक ऐसे वृक्ष हैं, जैसे कोई एक आम का वृक्ष होता है तो उससे क्या होता है आम मिलता है, सेब का होगा तो सेब मिलता है, जिस फल का वृक्ष होगा वैसा ही फल मिलता है, लेकिन जो ईश्वर रूपी तरवर है वृक्ष है उसमें से सभी फल मिलते हैं, कोई भी फल कोई चाहता हो तो मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप तो वृक्ष हैं और मैं आपके आश्रित रहने वाला पंछी हूँ, और मैं आपकी जो दी हुई संसार की वस्तुएं हैं ना, जो छाया रूप है आपका, इनका मैं उपभोग करता हूँ, लेकिन आपके दर्शन भी करता रहता हूँ, जब आपके आश्रित रहता हूँ तो आपके दर्शन मेरे को होते रहते हैं, परंतु मंदभागी तेरो दर्शन नाहीं, जो जिनके भाग्य अच्छे नहीं हैं उनको आपका दर्शन नहीं होता, क्योंकि दर्शन उन्हीं को होता है जिनके भाग्य अच्छे हैं, यानी जिन्होंने पुण्य कर्म अच्छे कर्म किए हैं, कौन से निष्काम कर्म किए हैं, उनको आपके दर्शन यानी वो आपके शरणागत रहते हैं, आपके आश्रित रहते हैं। तो शरणागत या आश्रित का है मतलब कि वो सब जगह आपका ही दर्शन करते हैं, तो आपके जो प्रभु रूपी जो वृक्ष है उसके फल कौन से हैं, जो संसारिक वस्तुएं हमारे को प्राप्त हुई है ये उसी की छाया है, उसी के कारण ही प्राप्त हुए हैं ना, उसकी सत्ता में है ना सब, तो इनका हम उपभोग करते हैं, कौन करता है जो उसके शरणागत रहता है। मंदभागी तेरो दर्शन ना है, जो खोटे भाग है जिनके अच्छे भाग्य नहीं है उनको प्रभु का दर्शन नहीं होता, वो प्रभु से विमुख रहते हैं, प्रभु के पास आना उनके भाग्य में नहीं होता। और उसके आगे क्या कहते हैं, तू सतगुर हो नौतन चेला, नौतन चेला, जैसे कोई नया नया जो चेला यानी शिष्य है गुरु के पास जाता है तो गुरु उसकी हर तरफ से रक्षा करता है, यानी ख्याल रखता है, उसको हर एक परिस्थिति में उसका ख्याल रख के उसका मार्गदर्शन करता है कि कहीं भटक ना जाए। तो इसलिए कहते हैं कि महाराज हे सतगुरु, आप सतगुरु हैं और मैं आपका नया चेला हूँ। जैसे कोई नया चेला होता है उसका गुरु ख्याल रखता, इस प्रकार आप मेरे को नया जान के, यानी मैं अभी प्रौढ़ नहीं हुआ, अभी मैं जिज्ञासु तो हूँ लेकिन बाल्यावस्था वाला जिज्ञासु हूँ, तो आप मेरी गुरु हो करके शिष्य की तरह रक्षा कीजिए। इससे क्या होगा, कहे कबीर मिल अंत की बेला। कहते हैं ये जो मेरे को मनुष्य जन्म है, इस जन्म में आप मेरे को अपने साथ मिला लीजिए। जब गुरु की शरण में हम जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, गुरु हमारे को युक्ति बताते हैं, महावाक्य आदि का श्रवण कराते हैं। तो जैसे कहते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, संत यानी गुरु, एक पारस के पास कोई धातु उसको स्पर्श करते हैं ना आप तो सोना बन जाती है, पारस भट्टी के साथ आप जो भी धातु लगाएंगे वह सोना बन जाती है। तो परंतु कहते हैं कि जो संत हैं, जो गुरु हैं, जो ईश्वर हैं, उनका और पारस का बहुत अंतर है। पारस यानी सभी धातुओं को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता किसी को। संतों में इतनी पावर है, गुरु में इतनी पावर है, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। जो पारस है वह लोहे को सोना बना सकता है लेकिन पारस नहीं बना सकता। गुरु में, संत में कितनी पावर है कि जो उनकी शरण में आ जाते हैं वो उनको अपने जैसा बना लेते हैं, यानी अपने में मिला लेते हैं, अपना स्वरूप बना देते हैं। गुरु की महिमा है, इसलिए कहते हैं कह कबीर मिल अंत की बेला। ये मेरे को जो मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है ना कई जन्मों के बाद, ये मेरा अंतिम जन्म है आपके चरणों में। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, यानी इसके बाद मेरे को चक्कर ना पड़े। आप मेरी अनजान समझ करके इस प्रकार मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे को अपने में मिला लीजिए। इस प्रकार यहाँ पर इस शब्द में कबीर जी महाराज जी ने भक्ति का जो सिद्धांत है उसको दृढ़ करवाया कि भक्त की भगवंत के साथ प्रीति कैसी होनी चाहिए, कैसी भक्त की मर्यादा होनी चाहिए, वो किस प्रकार का उसका जीवन आचरण करैक्टर उसका किस तरह का होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब संसार का आश्रम को छोड़ करके तो हम ईश्वर की, प्रभु की शरणागति को स्वीकार करते हैं, वहाँ जाते हैं। किस प्रकार जब महात्माओं के पास, गुरुओं के पास जाते हैं तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम्। जब हम संसार के चतुराई को छोड़ करके, बुद्धि बल को छोड़ करके, धन बल को छोड़ करके, विद्या बल को छोड़ करके जाते हैं विनम्र होकर के गुरुओं के पास, तब वो हमारे को मार्गदर्शन करेंगे तो हमारे को भक्ति में प्रवृत्ति होगी हमारी। और दूसरा शब्द आगे आरंभ हो रहा है। इस शब्द में कबीर जी महाराज बताते हैं कि महात्माओं की, साधुओं की, अतिथि की सेवा और परोपकार तथा सभी भूतों के ऊपर दया किस प्रकार करनी चाहिए। ये हमारा जो जीवन है उस जीवन को किस प्रकार जीना है संसार में, ऐसा बताते हैं। जब तक संसारक जीवन में हमारे को मार्गदर्शन नहीं मिलता तो संसारक जीवन हमारा दुखमय हो जाता है। इतना दुर्लभ जो हमारे को जन्म प्राप्त हुआ है, इसके अंदर ज्ञान होते हुए ही हम दुखी हैं, क्योंकि हमारे को जीवने की कला नहीं है हमारे पास। जब जीवन की कला, तरीका, ढंग जब आ जाता है तो जीवन सुखमय हो जाता है। दुखी होने का कारण एक है बस, हमारा जीने का तरीका सही नहीं है, काम करने का तरीका हमारा गलत है। फल तो हम बहुत ऊंचा चाहते हैं, बड़ा चाहते हैं, लेकिन काम वैसा नहीं करते, यानी पुरुषार्थ हमारा ऐसा नहीं होता जैसे फल की इच्छा रखते हैं। तो विधि पूर्वक बताते हैं कैसे करना चाहिए। तो अपना ही जीवन का दृष्टांत देते हैं कबीर जी महाराज। कबीर जी के जीवन में एक बार ऐसा हुआ कि काशी में कबीर जी महाराज रहते थे, तो वहाँ एक दिन किसी शाहूकार के घर में कोई चोर घुस गए चोरी करने के लिए। तो जब घुस गए उसके घर में, तो वहाँ पर जो पहरेदार थे उनको पता चल गया कि चोर घुस गए। जब मालूम हुआ तो उसी समय चोर सब भाग गए, लेकिन एक चोर जो था वो बेचारा कमज़ोर था, उससे भागा नहीं गया। तो जब भागा नहीं गया तो कहते हैं कि थोड़ा सा उसने प्रयत्न किया, वहाँ से निकला, लेकिन तेज नहीं भाग सकता था, तो उसके पीछे आदमी लग गए। अब उसको लगा कि भाग तो मैं सकता नहीं हूँ, इनके चक्कर में फंस जाऊँगा तो मार डालेंगे। तो उसने क्या किया कि जल्दी जल्दी में उसने कहा, और कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनकी शरण में जो भी कोई जाता है उसकी रक्षा करते हैं। तो ऐसा विचार करके वो कबीर जी के घर में घुस गया। उसको मालूम था कि ये कबीर जी भक्त हैं और संत हैं, ये मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। उसने जा कर के कबीर जी से प्रार्थना की कि मैं एक चोर हूँ, सब बतला दिया, सत्य सत्य बात बतला दी कि आप मेरी जैसे कैसे रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तो ये भक्त जो होते हैं, संत होते हैं, उनका ये वृद्ध होता स्वभाव होता है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, जो उनकी शरण में आ जाता है वो कैसा भी अपराधी होता है उसको कंठ से लगा लेते, यानी उसकी रक्षा करते हैं। तो कबीर जी ने क्या कहा, उसने ये भी कहा कि मेरे पीछे आदमी लगे हुए हैं। तो कबीर जी के घर में, परिवार में कबीर जी थे तो सब लोग सोए थे, रात्रि का समय था। तो कबीर जी कहते हैं कि वो उस खाट पर मेरी लड़की पड़ी है, उसके साथ सो जाओ। तो चोर ने वचन मान लिया, जो कमाली थी कबीर जी की लड़की, उसी के खाट पर उसके साथ सो गया चोर। उतनी देर को दौड़ते दौड़ते आदमी आ गए और उनको खोज खोजते पता चल गया कि चोर यहीं घुसा है। तो उन्होंने आकर के कबीर जी से बोला कि आपके पास एक चोर है, बताइए कहाँ है। तो कबीर जी महाराज कहते कि हमारे घर में तो कोई चोर नहीं है। कबीर जी महाराज ने कहा कि ये जो खाट है इस पे मेरी लड़की और मेरा दामाद है, इसको छोड़ के बाकी सब जगह तलाशी कर लीजिए, यदि चोर हो तो ले लीजिए। कैसे रक्षा करता है साधु जो होता, महात्मा होता, भक्त होता है, उसके अंदर दया कितनी होती है, परोपकार कैसे करता है वो। तो कहते हैं जब उन्होंने देखा, सब जगह ढूंढा, तो जब कह दिया कि ये मेरा दामाद है, ये मेरी लड़की है, तब वो कैसे कहेंगे, उनको चोर कैसे बताएंगे, पहचान तो नहीं थी उनको। तो इसलिए वो ढूंढते तलाशी करके चले गए, उनको चोर नहीं मिला। तो जब उसके बाद उसको चोर को मालूम हुआ तो उठ करके उनके चरणों में पड़ गया। तो उसको उन्होंने भक्ति का, प्रेमा भक्ति का उपदेश दिया और आगे के लिए चोरी से उसको हटा दिया। तो ये वाला जो हुआ ना कांड, इसको जब दूसरे दिन लोगों को पता चला तो लोग कबीर जी की निंदा करने लगे कि कैसे भक्त हैं, ये तो चोर के पक्ष करते हो, चोर को अपनी लड़की के साथ सुला दिया, इन्होंने कैसे भक्त हैं। ये कहते हैं कि हम सब में एकत्व का दर्शन करते हैं, तो ये क्या हुआ, ये तो चोर का पक्ष लेते हैं, एकत्व कहाँ देखते हैं। तो उन लोगों की बात सुन के कबीर जी महाराज जी ने यह बड़ा शब्द उच्चारण किया, कहते हैं जब हम एको एक कर जाने तब लोग काहे दुख माने। कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमारे जब हम गुरु शरण में गए तो हमारे को गुरु की शरण प्राप्त हुई, गुरु के सद उपदेश से हमने चिंतन किया, तो गुरु के उपदेश से चिंतन करके हमारे अंदर प्रेमा भक्ति आई, प्रेमा भक्ति के प्रभाव से हमारे को ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकत्व दर्शन हुआ, हमारी ईश्वर दृष्टि बन गई, सर्वत्र हम ईश्वर दर्शन करते हैं, एकत्व दर्शन करते हैं। तो ऐसा जब विचार किया, ऐसा विचार करने से हमने क्या किया, उस चोर को हमने अपनी लड़की के साथ सुला दिया, क्योंकि हम एकत्व दर्शन करते हैं, ये बात हमारी है, हम चिंतन करते हैं, तो हमने उस चिंतन के प्रभाव से ऐसा किया। तो ऐसा करने में तब लोग काहे दुख मानिया, कहते आप लोगों को इस बात का दुख क्यों हुआ, हमने किया है ना, ये तो हम एकत्व दर्शन करते हैं, तो ऐसा गुरु लोगों से हमने सुना है, तो उस बात का चिंतन हमने अपने जीवन में घटाया उस बात को, तो तभी हमने चोर की रक्षा के लिए, परोपकार के लिए हमने उसको लड़की के साथ सुला दिया, तो इसमें आप लोगों को क्यों दुख हुआ, यानी ये तो हमारा जीवन है, आप लोग ऐसा जीवन नहीं धारण कर सकते, तो आप हमारे से क्यों आकर के झगड़ते हैं, आप अपने घर में बैठे रहिए, यदि ऐसा जीवन बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा भी तो ऐसा ही होता है, केवल वहाँ की बात थोड़ा है, जो कोई भक्त है, जो कोई पूजा करता है या कहीं अच्छे काम करता है, तो उसकी निंदा हम कितनी करते हैं कि कल तो चोरी करता था, आज बहुत बड़ा भक्त कहलाता है, कल तो ऐसा करता था, कल वैसा, हम नहीं करते कि आज देखो कितना बड़ा भक्त बन गया, आंखें मीच के बैठ जाता है, ऐसे करता है, वो भी लोग ऐसे ही करते थे। तो इस प्रकार जब कबीर जी महाराज जी ने उन लोगों को समझाया, तो वो लोग कहते हैं कि आपको अपनी इज्जत भी नहीं देखी आपने, कि ये बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती है, आपने बेइज्जती कराई है। कौन सी बेइज्जती, एक बार एक और प्रसंग हुआ था कि कबीर जी महाराज संतों के बहुत भक्त हैं, मतलब संतों के इतने प्रेमी हैं, उनके घर में कोई संत अतिथि आ जाता था तो उसको खाली नहीं जाने देते, भोजन आदि जितनी भी सेवा होती थी वो करते थे, लेकिन घर में गरीबी थी उनके। एक बार ऐसा हुआ कि कबीर जी के घर में संत आ गए और घर में कुछ भी खाने के लिए था नहीं, कबीर जी ने कहा अपनी पत्नी माता लोई को कहा कि अब संत हमारे घर से खाली जाएंगे तो हमारा गृहस्थ धर्म जो है उसको धब्बा लगेगा, कि हमारे पास अतिथि आ जाए, गृह शोभा जाके रे नाहे आवत पहिया खुदे जाहे, यदि उसके घर से चला जाए गृहस्थी के घर से अतिथि तो उसको दोष लगता है, तो हम लोग गृहस्थी हैं तो ये संत लोग आए हैं तो इनके खाने का कोई इंतजाम करो। तो माता लोई ने कहा कि करते हैं, तो माता लोई ने क्या सोचा, उनके थोड़ी दूर की बनिए की दुकान थी, तो माता कबीर जी से आज्ञा लेकर के तो बनिए की दुकान पर चले गई, लेकिन पहले भी वो जो बनिया था ना, माता लोई जी को देख करके उसका मन मोहित रहता था, ऐसा था उसके बनिए के मन में उनके प्रति, लेकिन आज माता लोई को जरूरत पड़ गई, तो माता जब वहाँ पहुँची तो बनिया पहले ही खुश हो गया देख करके कि मैं तो इनको चाहता था, लेकिन आज ये अपने आप आ गई हैं तो ठीक है, अच्छा है। तो जाते हैं पूछा, क्या चाहिए आपको, किस लिए आए हैं, कौन सी वस्तु चाहिए, जो कहेंगे हम देंगे। उसके मन में और था, तो लोई माता ने कहा कि यह जो हमारे को वस्तु चाहिए, हमारे घर में अतिथि आए हैं। तो उसने कहा मेरे को वचन कर, मेरे को आपको वस्तु तो मैं दे देता हूँ, लेकिन आपको मेरे पास आना पड़ेगा। तो माता लोई ने कहा कि ये मेरे को वस्तु दे दो, हम संतों की सेवा करके तो रात्रि को आपके पास हम आ जाएंगे। तो उन्होंने बहुत प्रसन्नता से सभी वस्तुएं दे दी। तो माता लोई लेकर के घर में आए, उनको महात्माओं को सेवा से प्रसन्न किया, विदा किया। तो रात्रि को जब महात्मा चले गए, उस समय वर्षा बहुत ज़्यादा थी, पर माता ने आकर के कबीर जी को महात्माओं के जाने के बाद बात बतलाई कि ऐसा मैंने वचन किया है बनिए के पास, तो अब हम अपना वचन पूरा करने के लिए वहाँ जाएंगे, तो आप मेरे को आज्ञा दीजिए। तो कबीर जी महाराज भी भक्त हैं, उनको भी मालूम है, वो कहते कोई बात नहीं, आपने वचन दिया है तो आप अवश्य निभाइए, लेकिन हम ही आपके साथ चलते हैं। कबीर जी महाराज कहते, क्योंकि वर्षा बहुत थी, तो कबीर जी ने उनके ऊपर कपड़ा दे करके तो लोई जी को ले करके वहाँ पहुँच गए बनिया के पास। तो बनिया कहते पहले ही वहाँ बैठा था, दीपक जला करके बैठा था, प्रतीक्षा करता था कि लोई आएगी। तो जब गए वहाँ माता जी, तो बनिया देख करके प्रसन्न हुआ। उन्होंने कपड़े से शरीर ढका हुआ था, बाहर से गए थे ना, तो जब गए अंदर तो कपड़ा उतारा शरीर से और देखा कि शरीर इनका एकदम भीगा ही नहीं है, कपड़े सूखे पड़े हैं। तो बनिया बहुत हैरान हुआ कि कारण क्या है, इतना बड़ा मतलब वर्षा हो रही है तब भी इनका कपड़ा, क्योंकि कबीर जी गए हैं साथ में, कबीर जी बाहर खड़े थे। तो जब संतों की बात बतलाई और ये देखा, तो बनिए का जो कबीर जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि बनिए का मन बदल गया। तो वो कहता माता लोई जी के चरणों में पड़ गया बनिया, कहता कि मेरे से भूल हो गई, मैं आपको नहीं समझ पाया, तो मैं आज से आपका पुत्र हूँ, आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए। तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया, यानी ये सेवा का फल हुआ, परोपकार करने का फल हुआ। तो जब इस प्रकार हुआ तो लोग फिर कहने लगे भाई आप कैसे भक्त हैं, आपने बेइज्जती करा दी, अपनी घरवाली को बनिए के पास भेज दिया आपने, आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है। तो कबीर जी महाराज कहते हैं कि इज्जत का ख्याल तो है। दूसरी जब पंक्ति में कबीर जी महाराज को इन लोगों ने इस प्रकार कहा, तो कहते हैं कि आप बहुत बेइज्जत हैं, आपको ख्याल नहीं है। कबीर जी महाराज कहते हम अपत्य हैं, अपनी पत कोई, कहते ठीक है हम अपत्य हैं, हमारे को पत की लाज नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पत थी ना, हमारी इज्जत थी, आपकी तो नहीं थी। यदि हमने इज्जत को नहीं देखा तो हमारी इज्जत गई, आपकी तो नहीं गई। हम अपत्य है अपनी पत कोई, हमारी पत गई है, हमारी इज्जत गई है ना, जब हमने स्त्री को भेज दिया बनिए के पास, लेकिन हमने संतों की सेवा के लिए भेजा था। यदि इतना कहने के बावजूद भी आप मानते हैं कि हमने अच्छा काम नहीं किया, हम बेइज्जत हैं, तो कहते कोई बात नहीं, हमारी अपनी इज्जत है, आपकी तो नहीं है। यदि हम ऐसे हैं, बुरे हैं, आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, तो हमारे खोज पर हो मत कोई। वो कहते हैं आप लोग फिर हमारे पीछे मत लगो, आप अपना काम करो, हमारी इज्जत है, हम बेचे जाहे रखे वो हमारी बात है, लेकिन तो हम जानते हैं हमने किस लिए बेइज्जती हमारी, आप कहते हैं तो कोई बात नहीं। कहते हैं पत हमने अपनी खोई है, आप हमारे जो हमारे वाला जीवन है ऐसा मत व्यतीत करो, यदि आपको अच्छा नहीं लगता। यानी हम संत सेवा में और अतिथि की सेवा में, परोपकार के लिए, भूतों पर दया करने के लिए हमने ये काम किया, लड़की के साथ चोर को सुलाया, अपनी पत्नी को बनिए के पास भेजा, किस लिए? जीव रक्षा के लिए, भूतों पर दया करने के लिए, संत सेवा के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं आप हमारे चक्र में मत पड़ो, आप अपना काम करो। अथवा ऐसा फिर कहते हैं कि हम कोई बेइज्जत नहीं है, बेपतवड़े नहीं हैं, क्योंकि जो भी हमने काम किया है परोपकार के लिए किया है। तो लोगों को कहते हैं, फिर लोगों ने कहा कि ये दो काम करने से आप लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लोग आपको सब बुरा मानते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते हम मंदे मंदे मन माही, साज पात काहू से नाही। यानी भक्त की और लोगों की बात बताते हैं कि भक्त का जीवन कैसा होता है, लोगों का कैसा होता है। तो लोगों का जैसा किसी का जीवन होता है वैसा ही दूसरे को मानता है, जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा हम दूसरे को भी सोचते हैं। यहाँ पर केवल उनका एक जीवन का दृष्टांत दे करके हम लोगों को समझाना चाहते हैं कि भक्तां की चाल नराली, चाला नराली भक्तां केरी, विखम मार्ग चलना, लब लोभ काम क्रोध तस इतना बहुत ना ही बोलना। कहते हैं कि वो उनकी चाल, उनकी मर्यादा, उनका आचरण, उनका करैक्टर ही अलग होता है और लोग समझ ही नहीं पाते। भगवान को कह देते हैं लोग, भक्त की बात क्या है, भगवान के ऊपर उंगली उठाते हैं लोग, भगवान कृष्ण ने ऐसा काम किया, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया, सभी के ऊपर ये संतों ने ऐसा काम क्यों किया। क्योंकि अपनी जैसी वृत्ति होती है वैसा दूसरे को मानते हैं। तो कबीर जी महाराज कहते ठीक है हम बुरे हैं, हम मंदे हैं, लेकिन हम अपने मन में ही बुरे हैं ना, आप लोगों के साथ हमारा कोई कार व्यवहार ही तो नहीं है, सांझ भी नहीं है। यदि हम बुरे हैं तो हम अलग हैं, आपसे हमारा कोई खाना पीना, कोई उठना बैठना नहीं है, हम आपसे अलग हैं। लेकिन एक बात कहते हम आपको बतलाते हैं कि हम लोगों मेरे को देख करके तो आप लोगों ने उंगली उठाई है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको पत की ख्याल नहीं, आप बेइज्जत हो। मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को तो ख्याल है कि इज्जत किस में है, बेइज्जती किस में है, मैं तो इसी ख्याल में हूँ। लेकिन आपको कहते मैं बतलाता हूँ कबीर जी महाराज कि पत अपत ताकि नहीं लाज, मेरे को तो लज्जा है कि पत किस में है, अपत किस में, यानी इज्जत किस में है, बेइज्जती किस में है। इसलिए मैं तो उस ख्याल से ही काम कर रहा हूँ। आप अपना ख्याल कीजिए, आपको ना पत का ख्याल है ना अपत का ख्याल है, आपको तो याद ही नहीं है। मेरे लिए तो कहते हो लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि जो बेइज्जती वाले कर्म हैं वो कौन से हैं और इज्जत वाले कर्म कौन से हैं। आप तो अंधाधुंध जो आपके सामने आता है वैसा ही कर्म करते जाते हो, यानी बुरे कर्म करते हो, वो अपत के हैं, बेइज्जती वाले हैं। लेकिन ना तो आपको ये मालूम है यानी शुभ कर्म कौन से हैं, अशुभ कर्म कौन से हैं, कौन से विहित कर्म हैं, कौन से अविहित हैं, किस कर्म का विधान कहा है वेद ने, महापुरुषों ने किसको ना करने के लिए कहा है, ये भी तो आपको ख्याल नहीं है। आप बुरे कर्म करते हो, चोरी करते हो, संसार से भी चोरी करते हो और प्रभु से भी चोरी करते हो। जब कोई बुरा कर्म करता है तो वो सबसे ज़्यादा कोशिश करता है कि वहाँ पर कहूँ जहाँ किसी को भी पता ना चले। तो कहते हैं कि संसार से छिपा सकते हो, प्रभु से कैसे छिपाओगे? बुरे कर्म संसार की दृष्टि से बच सकते हो कुछ देर के लिए, लेकिन प्रभु की दृष्टि से नहीं बच पाओगे। डांटते हैं लोगों को कि आप लोगों को पत अपत का नहीं मालूम, लेकिन हम कहते आपको बतलाते हैं कि भले आप कितना भी चोरी छिप करके बुरे कर्म करो, अच्छे कर्म तो करते हैं तो लोगों को दिखाते हैं बहुत, लेकिन बुरे कर्म करते हैं तो अंदर छिप करके करते हो। तब जानोगे जब उग्र गोपाज हम तो जो कर रहे हैं हमारा जीवन तो कहते आपके सामने है, तो आपको लगता है, लेकिन आपका तो किसी के सामने नहीं आप होना चाहते। आप छिप करके करते हो, लेकिन हम कहते आपको एक बात बतलाते हैं कि पात कौन सी होती है, अपात कौन सी होती है, इज्जत किसको कहते हैं, बेइज्जती किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा कहते हमारे को आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। ना आपको मालूम है इस जिंदगी में कि इज्जत किसको कहते हैं, बेइज्जती किसको कहते हैं। आप अपने अनुसार कर्म करते जाते हो, तब जानोगे जब उग्र गोपाज, उस समय आपको पता चलेगा जब आपका चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढक है, उस समय बताइए कौन आपका पर्दा ढकने वाला होगा। उस समय आपको वहां बताया जाएगा कि ये इज्जत है, ये बेइज्जत है। एक एक कर्म का आपको हिसाब जब देना पड़ेगा तब जानोगे, उस समय आपको सोझी आ जाएगी, पता चल जाएगा। लेकिन उस समय हमारे को याद करोगे फिर पता चलेगा कबीर जी ठीक थे, हम गलत थे। तो यानी भक्त का और संसारी लोगों का जीवन का इतना अंतर होता है कि भक्त जो होते हैं वो संसार के लिए आदर्श होते हैं, लेकिन उनके कर्मों के ऊपर संसारी लोगों की नज़र रहती है। यदि संसारी कोई आदमी गलती करता है तो लोग कहते हैं ये तो बेचारा संसारी था, गृहस्थी था, इसलिए इसे हो गया, कोई बात नहीं। यदि किसी भक्त से कोई गलती हो जाए, संत से हो जाए, तो कहते हैं भी इन्होंने ऐसा काम क्यों किया, इनको तो मालूम था ना। ऐसा हम ही तो कहते हैं कि उनका तो मान लिया बेचारे संसारी हैं, तो उनसे तो गलती हो गई, लेकिन इन्होंने गलती क्यों की। क्योंकि अपनी गलती गलती नहीं है, दूसरे की गलती गलती है। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि हमारी तरफ तो ख्याल करते हो, लेकिन अपने लिए भी ख्याल करो कि आपकी इज्जत बेइज्जत किस में है। तब का आपको पता चलेगा जब उग्र गोपाल, जब आपको जाना पड़ेगा। किस लिए कहते हैं कि पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाही। इस बात को यहाँ पर सिद्धांत सिद्ध करते हैं कि पुण्य पाप जो बीज दे, जो पाप रूपी बीज बीजते हैं या पुण्य रूपी बीज बीजते हैं, दोनों ही, भले कोई पुण्य करता है भले कोई पाप करता है, जो दो बीज बीज के संसार से जाते हैं उनको क्या होता है, वो कोई सचखंड में नहीं जाते, वो कोई बैकुंठ में नहीं पहुंच जाते, स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते, उनको कहाँ जाना पड़ता है, धर्मराय के जाही, धर्मराज के पास जाना पड़ता है। वहाँ से पहले हो करके तो वहाँ से भेजते हैं जहाँ भेजते हैं उनको, पहले सीधा वहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि अब आपको वहाँ पर जा करके पता चलेगा। जब इस प्रकार बोला कबीर जी ने, तो उन लोगों में से कोई एक बुद्धिमान भी था, श्रद्धालु था, तो उसने कहा कि महाराज ठीक है, हम लोग नहीं जानते, बिना जान करके ऐसा हमने बोला, हम लोगों की बुद्धि इतनी नहीं है, आप बताइए कि हमारे को फिर क्या करना चाहिए, आप कौन सा सिद्धांत हमारे लिए छोड़ेंगे जिस पर चल करके हम लोग समझ पाएं, हम लोगों की इज्जत बन सके, ऐसा कौन सा काम है। तो कबीर जी महाराज फिर उस भक्त को जो एक जिज्ञासु था उसको लेकर के सबको कहते हैं कि इज्जत कौन सी अच्छी होती है। संसार में इज्जत होती है धन से, पैसे से, प्रतिष्ठा से होती है इज्जत, लेकिन वो खराब भी होती है, हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। वो इज्जत कितनी देर रहती है, पैसे वाली, पद वाली, प्रतिष्ठा वाली, जब तक पद है जब तक पैसा है, लेकिन वही आदमी बेइज्जत भी हो जाता है एक दिन, जो आज उसकी इज्जत है लेकिन कल को बेइज्जत है। तो इसलिए ये वाली जो इज्जत है इसके बाद में बेइज्जती भी है, छिपी हुई है इसके पीछे। तो वो कहते हैं कि पात अपात आपको नहीं मालूम, तो उन्होंने कहा कौन सी पात है, कौन सी इज्जत है अच्छी। तो कबीर जी महाराज कहते कहो कबीर पात हर परवान, कहते हैं ऐसी इज्जत होनी चाहिए जो इज्जत प्रभु को परवान है, संसार को नहीं। जिस इज्जत को संसार के लोग आपको दे रहे हैं ना, जो इज्जत मान, वो कहते प्रभु को परवान नहीं है, उस मान का खंडन किया है। उस मान के लिए तो कहा है कि साधो मन का मान त्यागो। पहला आपको बताया था, सबसे पहला प्रथम उपदेश है गुरु तेग बहादुर महाराज जी का। उस मान की बात करते हैं संसार की, जो इज्जत लेकर के हम, इज्जत का अहम लेकर के बैठे हैं ना, उसको कहते हैं यदि कुछ लेना चाहते हो, यदि परम पद को लेना चाहते हो, तो साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते अहर्ष भागो, सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना, हरख सोगते रहे न्यारो ना है मान अपमाना। इस प्रकार के वचन कहते हैं कि उस इज्जत को मत देखो, वो संसार में रहने वाली इज्जत है, प्रभु को परवाह नहीं है। प्रभु उस इज्जत का, उसका मान अहम पहले छोड़ के कहते हमारे पास आओ। तो कहते हैं कि कहो कबीर पात हर परवान, यानी प्रभु के पास जाकर के, ईश्वर के दरबार में जाकर के, संसारक व्यवहारक पक्ष बताते हैं, ज्ञानी के लिए नहीं बताते हैं, जिज्ञासु को बताते हैं। ज्ञानी का कहीं आना जाना नहीं होता कि वो किसी दरबार में जाएगा, उसको नहीं जाना होता। जब कहते आप जाओगे कर्म करके, तो वहां जाकर के इज्जत मिले आपको। वो इज्जत ऐसी है जो प्रभु को प्रवान है, वो आपको ऐसी इज्जत कब मिलती है, यानी यहाँ भी लोग सत्कार करें, और जहाँ से जब जाते हैं तो रास्ते में भी लोग सत्कार करें, जहाँ पहुँचेंगे वहाँ भी करें। करता है धर्मराज जो दूसरे लोगों का निरादर करते हैं ना जमदूत, लेकिन जब कोई भक्त जाता है प्रभु का प्यारा, तो वो कहते हैं उठ करके खड़ा हो जाता है सत्कार करने के लिए। इज्जत कैसे देता है, वो कहता है कि आपने आकर के मेरी पुरी को पवित्र कर दिया। धर्मराज उठ के खड़ा हो जाता, कहता कीतो भवन पुनीत, ऐसा बोलता है, उठ के खड़ा हो जाता, मान देता है। तो इसलिए कहते ऐसी इज्जत, उन्होंने कहा हे भगत जी ऐसी इज्जत मिलेगी कैसे, हम लोगों को तो मालूम नहीं है। तो भक्त जी महाराज कहते हम बताते हैं कि वो वाली इज्जत कैसे मिलती है, सर्व त्याग भज केवल राम। कहते संसार के जितने चिंतन है, झूठे पदार्थों का चिंतन, इसको छोड़ करके क्या करो, भज केवल राम। केवल जो राम की शरण में जाकर के प्रभु की प्रेमा भक्ति संकीर्तन है, उसका स्मरण करो, प्रभु को याद करो, प्रभु का चिंतन करो। तो फिर कहते हैं जिस इज्जत की हम बात करते हैं, वह जो इज्जत है आपको मिल सकती है। हरि ओम तत्सत। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री स्वामी निर्मल जी महाराज की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय।